सामान्य मर्यादा होती है, लेकिन वृत्ति परिसंख्यान में उससे भी कम सीमा बना सकते हैं। परिसंख्या मर्यादा विधा है, अहम आहारम भोक्ष्यामि तदा हम भुंशे भोजनम करिष्यामि इति। अगर ऐसा हमें नियम हमारा पूरा होगा तो ही हम भोजन करेंगे, अन्यथा न, नहीं तो नहीं करेंगे। इत्याब्धि प्रमाणम यत्र भोज्ये किं वा अथवा संकल्प कल्पितम मनसा संकल्पितम विरसम विगत रसम रस रहितम नीरसम। अथवा मन में संकल्प कर लिया कि नीरस भोजन मिलना चाहिए हमें, किमवत कैसा, पशुवत, जैसे गाय के जो चारा होता है उसको जब खिलाते हैं तो उसमें आप मिर्च मसाला डालकर थोड़ी खिलाते हैं, सीधा चारा डाल देते हैं। वैसे साधु अगर मन में संकल्प कर ले कि नहीं हमें वैसा ही भोजन चाहिए, बिल्कुल कुछ भी न डाला हो, जिसमें न घी हो न नमक हो न कोई रस न हो, तो लेंगे वरना नहीं लेंगे। तो ये भी उनका एक वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग अलग है, ये वृत्ति परिसंख्यान है। रस परित्याग में तो क्या है कि रसों के त्याग का संकल्प है, और यहां तो क्या है कि आहार के त्याग का संकल्प है। अगर वैसा भोजन न मिले तो आहार का ही त्याग है, ऐसा है। हाव भाव विभ्रम श्रृंगार मंडित नव यौवन नव यौवनिक कामिनी गौह धेनु तृण खल कर्पास आदिकम ददाती। जैसे मान लो किसी घर में गाय पली हुई है और उस गाय को तिनके खल यानी वो जिसमें से तेल निकल जाता है ना, ऐसा वो मूंगफली जिसमें से तेल निकाल लिया गया, इस प्रकार की जो वस्तुएं रहती है वो खल, और कर्पास आदिकम और कपास वगैरह के जो बीज होते हैं ना वो भी उनको खाने के लिए दे देते हैं गाय को। तो देने वाली कौन है, तो बोले हाव भाव विभ्रम श्रृंगार से मंडित नव यौवन से सहित कोई कामिनी यानी स्त्री है। तो सा गौ अधोमुखे ने तृणादिकम अत्ति, वो गाय तो नीचे मुंह करके वो घास और वो खाते रहती है, उसके श्रृंगार आदि को नहीं देखती। न तो कामिन्यादि कावलोकनेन प्रयोजनम, उस गाय को उससे क्या लेना देना है कि उसने कौन से कपड़े पहने, कौन से आभूषण पहने और क्या है, वो बस अपने भोजन से मतलब रखती है। तथा उसी प्रकार भिक्षुर भिक्षु भी भिक्षावलोकनम अधोमुखेन करोति, उस भोजन का अवलोकन ऐसे नीचे दृष्टि करके करते रहते हैं, शोधन करते रहते हैं। न तो कामिन्यादि कावलोकनम अवलोकनेन प्रयोजनम, न तो परावलोकनम गोवत गोचर्या मार्गेण वा सुस्वादु निस्वादु भिक्षाम न अवलोकते। वो वहां के सुंदर रूप आदि को भी साधु नहीं देखते, और गाय के समान जैसे गाय ये भी नहीं देखती कि इसमें मिर्च मसाले है कि नहीं, सादा भोजन है तो ठीक है स्वादिष्ट है तो भी ठीक है, वो सुस्वादु और दुस्वादु निस्वादु सुस्वादु और निस्वादु इनको ग्रहण इनकी तरफ ध्यान नहीं देते। यत्याचार्य, फिर यत्याचार्य में लिखा गोयर पमाण दायग भाजन नाना विधान जंग गहणम तह एसणस गहणम विविधस्य वृत्ति परिसंख्या। वृत्ति परिसंख्या की परिभाषा दे दी, गोचरस्य प्रमाणम, गोचर प्रमाणम गृह प्रमाणम, कितने घरों का प्रमाण माने 10 घरों के अंदर, यहाँ से जैसे निकले मंदिर से तो फिर जितने घर मिलेंगे तो उसमें मान लो 10, 15, 20 इतने घरों के अंदर अगर कोई पड़गान कर लेगा तो मैं आहार ले लूँगा, अगर उसके बाहर उस संख्या के आगे कोई पड़गान करेगा तो फिर मेरा उस दिन का नियम नहीं बन पाएगा। एतेषु एक द्वि त्रि कादिषु गृहेषु प्रविशामि न अन्येषु बहुषु, और बहुत सारे घर में होंगे चौके लेकिन वहां पर मैं प्रवेश नहीं करूँगा। अस्य गृहस्य परिकरतया अवस्थिताम भूमिम प्रविशामि न गृहम इत्यभिग्रह। ऐसा भी नियम ले सकते हैं कि इस घर की जो परिकर रूप से अवस्थित भूमि है तो वहां आहार नहीं लूंगा, ऐसा भी नियम ले सकते हैं साधु। फिर पाटकस्य संख्याम पाटकस्य गृहस्य संख्याम च करोति, पाटक का अर्थ होता है मोहल्ला, तो मोहल्ले की भी संख्या कर लेते हैं। जैसे मान लो किसी गांव में मंदिर के आसपास 4 मोहल्ले हैं तो फिर वो संख्या कर लेंगे कि इनमें से अगर इन 2 मोहल्लों में कोई मुझे आहार देगा तो ग्रहण करूंगा, और बाकी 2 मोहल्लों में अगर पड़गाहन भी करने खड़े होंगे तो वहां से आहार नहीं लूंगा। घरों की संख्या भी निश्चित कर सकते हैं। दायको दातार स्त्रियैव तत्रापि बालया युवत्या स्थविरया निरलंकारया ब्राह्मण्या राजपुत्र्या तथा एवं विधेयन पुरुषेण इत्यम आदि अवग्रह। अब दायक का अर्थ क्या होता है, इसका अभिग्रह करने का मतलब, जो दान देने वाले हैं उनमें भी ऐसा संकल्प ले सकते हैं कि आज मैं अगर पांच स्त्री होगी, पांच स्त्रियां होंगी तो भी उसमें स्त्रियैव एक ही स्त्री से आहार लूंगा, ऐसा नियम ले सकते हैं। अब लेकिन क्या है कि साधु अपनी भूमिका और फिर अपनी क्षमता और अपनी अवस्था आदि सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख करके ऐसा नियम लेंगे और गुरु से अनुमति लेकर के लेंगे। क्या होता है कि कोई परिपक्व साधु है तो वो जानते हैं कि कहाँ पर कैसा नियम लेना, नहीं तो कभी कोई ऐसा नियम ले ले और फिर जनता में चर्चा का विषय बन जाए कि देखो आज इसी से लिया यार। अब वो उनके तप के लिए उनने किया, लेकिन लोगों की दृष्टि कहाँ उतनी निर्मल है, लोग सोचेंगे कि देखो एक ही उससे ले लिया यार। अब वो कोई देखो कैसी स्त्री हो सकती है, वो तत्रा भी स्त्री भी हो लेकिन बालिया, अगर बच्ची होगी तो उसी से लूंगा, ऐसा नियम ले सकते हैं। तो खैर बच्ची के बारे में ज्यादा संकल्प विकल्प नहीं होता पब्लिक में, लेकिन युवत्या अगर जवान होगी तो उसी से लूंगा, ऐसा भी संकल्प ले सकते हैं साधु। ये आगम का विधान है कि अगर साधु वृत्ति परिसंख्यान में ऐसा संकल्प ले ले कि अगर कोई जवान स्त्री मुझे आहार देगी उसी से लूंगा, बाकी जितने लोग बैठे वहां पर वो शोधन करो या कुछ भी करते रहो, सेवा करो, लेकिन लेऊंगा मैं इन्हीं के हाथ से, तो ऐसा नियम भी ले सकते हैं। अब यद्यपि सामान्यतः लोग इन बातों पर ज़्यादा वो नहीं करते, लेकिन कहीं पर किसी के मन में इस प्रक्रिया को देख करके कोई विचार या विकार आ सकता है कि देखो उससे क्यों लिया महाराज ने, हम लोगों से क्यों नहीं लिया। अब ईर्ष्या बहुत होती है, मतलब माताओं बहनों में ईर्ष्या, ईर्ष्या भाव ऐसा है बहुत जल्दी होती है। क्या है कि हिंदुस्तान में नारियों की जो दशा है उसमें एक कारण ये भी है, अगर ईर्ष्या छोड़ करके सब नारी एकता हो जाए तो फिर सबको ठिकाने लगा दो, लेकिन ईर्ष्या के कारण वो एकता हो नहीं सकती, ये स्थिति है, मतलब एक साइकोलॉजी है। तो ऐसे भी भाव आ सकते हैं कदाचित, तो साधु उस परिस्थिति को देखकर, लेकिन शास्त्रों में ऐसा विधान है कि ऐसा भी कर सकते हैं। स्थविरया, स्थविरया का अर्थ होता है कि जो वृद्धावस्था जिनको आ गई है उन्हीं माता से मैं आहार लूंगा। अब साधु के लिए तो क्या है कि युवती बालिका ऐसा भेद नहीं है, वो तो बालिका को पुत्री के समान देख रहे हैं, युवती को बहन के समान देख रहे हैं और फिर वृद्धा को माता के समान देख रहे हैं, तो ऐसा नियम भी ले सकते हैं कि कोई वृद्धा माँ देगी आहार तो लूंगा। अथवा निरलंकारया, अलंकारों से रहित अगर कोई नारी, कोई विधवा नारी हो, इस प्रकार से अगर कोई अलंकार रहित नारी देगी आहार तो उनसे आहार लूंगा, अन्य से नहीं लूंगा। अथवा ब्राह्मण्या, ब्राह्मणी अगर आहार देगी तो उनके हाथ से लूंगा, अन्य से नहीं लूंगा। राजपुत्र्या, राजपूत कन्या अगर आहार देगी या राजपूत स्त्री आहार देगी तो उनके हाथ से लूंगा, बाकी के हाथ से नहीं लूंगा। इस तरह तथा एवं विधेयन पुरुषेण, इसी प्रकार से पुरुष के बारे में भी बहुत सारे नियम हो सकते हैं। तो ये इत्येवम आदि अवग्रह, ये अवग्रह हो गया। भाजनानी, अब देखो बर्तनों के बारे में भी वो संकल्प ले सकते हैं, आहारचर्या के लिए साधु जब निकले हैं तो बर्तनों को लेकर के भी नियम कर सकते हैं। एवं भूतेन भाजनेन आवन एव आनीतम गृह्णामि, इस प्रकार के बर्तन में लाया हुआ भोजन ही ग्रहण करूंगा। कौन से भोजन में? सौवर्णेन, अब देखो कई प्रकार के हो सकते हैं भोजन, सौवर्णेन सोने के बर्तन में अगर ला करके देंगे ये तभी लूंगा। अब ये क्या उनकी तपस्या है, वो ऐसा नहीं है कि मतलब राजसी ठाट चाह रहे हो कि भी ऐसे घरों में मेरा पड़गान हो जहां पर सोने के बर्तनों में भोजन देते हो, नहीं वो अपनी तपस्या के लिए कर रहे हैं। अथवा कांस्य भाजनेन, कांस्य के बर्तन में भोजन दे, राजतेन रजत, रजत किसको बोलते हैं, चांदी को, तो उस चांदी के बर्तन में अगर भोजन देंगे तो लूंगा। मृणमयीन, अथवा मिट्टी के भोजन भाजन में पात्र में अगर देंगे तो लूंगा, इसका मतलब मिट्टी के बर्तन में भी साधु ले सकते हैं नियम कि इसमें लाया हुआ भोजन ही ग्रहण करूंगा। पर मिट्टी का पात्र जो है उसके बारे में इतना ज़रूर विवेक होना चाहिए कि जैसे अभी जो कुमार लोग बनाते हैं तो उसमें कुछ अशुद्धियां भी मिश्रित कर लेते हैं, तो वैसा पात्र ना हो, शुद्ध मिट्टी का अगर पात्र हो तो बात अलग, क्योंकि आप समझ रहे होंगे उस बात को ये आपकी जानकारी में है या नहीं पता नहीं, जो मटके वगैरह जो बनते हैं उसको कभी एक आध बार जाकर आप देखो तो पता चले कैसे बनते हैं। उसमें कुछ जानवरों के मल वगैरह भी मिलाए जाते हैं, घोड़े वगैरह के, तो वैसा पात्र न हो साधु के भोजन का, तो ऐसा नियम ले सकते हैं। यत नाना विधानम नाना करणम तस्य ग्रहणम स्वीकरणम, और भी अनेक प्रकार के वो नियम ले सकते हैं। मार्गे गृहांगणे च स्थितो हम कोपी माम प्रतिगृह्णाति तदा हम तिष्ठामि इति। मार्ग पर अथवा घर के आंगन में दोनों प्रकार की स्थितियां हो सकती है। क्या है कि कभी कभी ऐसी स्थिति है कि घर के आंगन में पड़गान करने पर साधु जा नहीं सकते। वहां आंगन मान लो फर्स्ट फ्लोर पर है किसी का घर, तो वहां फर्स्ट फ्लोर पर अगर वो पड़गान करे तो साधु कैसे जाए ऊपर से बुलाने पर, तो उसको वहां नीचे रास्ते में आना पड़ेगा और वहां से पड़गान करना पड़ेगा। तो चौथी मंजिल पर किसी का चौका है, अब क्या करेगा वो, उसका जो आंगन है वो तो लिफ्ट के पास में, वहां से हे स्वामी करोगे तो नीचे आवाज भी नहीं जाएगी, कैसे करेगा फिर, तो उसको वहां आना पड़ेगा यह योग्य स्थान पर। स्थितोहम कोपी माम प्रतिगृह्णाति, मैं मार्ग में खड़ा हो जाऊंगा अथवा किसी के घर के आंगन पर खड़ा हो जाऊंगा और तब कोपी माम प्रतिगृह्णाति कोई मुझे वहां पर पड़गान करने के लिए एकदम आ जाएगा, पड़गान करने के लिए तुरंत निकल करके आ जाएगा पड़गान करने के लिए, तदा हम तिष्ठामि तब मैं ठहर जाऊंगा। देखो ऐसा भी नियम ले सकते हो, नहीं तो लोग पहले से खड़े रहते हैं और मान लो कोई नहीं खड़ा और साधु आकर के खड़े हो गए, वो तुरंत आकर के खड़े होकर के पड़गान करने लग जाए तो साधु का ऐसा नियम हो सकता है कि ऐसे पड़गाहेंगे तो जाएंगे, ऐसा भी नियम हो सकता है। तथा उसी प्रकार अनशनस्य विविधस्य नाना प्रकार, अशनस्य यानी अनशनस्य अनशनस्य विविधस्य अनेक प्रकार का जो अनशन है नाना प्रकार से तद ग्रहणम अवग्रह उपादानम, या फिर इतने उपवास के बाद मैं आहार ग्रहण करूंगा, ये भी एक प्रकार की वृत्ति परिसंख्या होगी। उपवास तो अलग हो गया लेकिन इतने उपवासों के पहले मैं आहार नहीं लूंगा, ये संकल्प हो गया। अब एक अवग्रह 14वीं शताब्दी में वीरसेन आचार्य हुए, अयोध्या प्रसाद गोयली ने उनकी कथा लिखी है, हमारे पास पुस्तक है, और अभी एक ब्रह्मचारी जी आए थे वो फोटोकॉपी करा करके ले गए पूरी किताब की, इतनी सुंदर घटनाएं दी उन्होंने, सत्य घटनाएं। 14वीं शताब्दी में एक वीरसेन नाम के मुनि हुए, उन्होंने ये अवग्रह लिया था कि जब तक 100 लोग जिन धर्म को नहीं स्वीकार करते तब तक आहार नहीं लूंगा। तो जब भी वो आहार लेते थे तो 100 लोग जैन बनते थे फिर आहार लेते थे, क्योंकि तमिलनाडु में एक बहुत विकट स्थिति बन गई थी, वहां के राजा वेंकटमई टेई ने सब जैनों का कत्ल करवा दिया था, कुछ ऐसी बात हो गई थी जैनों में और राजा के बीच में कुछ ऐसा मनमुटाव हो गया था, तो उस कारण से उसने जैनों का कत्ल करवाया। आज भी मदुराई के मीनाक्षी मंदिर में वो भाला ले लेकर के वो लोग जैनों का वध कर रहे हैं, ऐसे चित्र बने हुए हैं आज भी। वो मीनाक्षी मंदिर भी जैन मंदिर था पहले, ऐसे तिरुपति बालाजी का मंदिर भी नेमिनाथ भगवान का मंदिर था, ऐसे बहुत सारे मंदिर, बद्रीनाथ का जो मंदिर था आदिनाथ भगवान का मंदिर था, ऐसे कई मंदिर जो है वो कन्वर्ट हो गए हैं। तो उस समय फिर उन्होंने ये संकल्प ले लिया था, ऐसा भी वो वृत्ति परिसंख्यान साधु कर सकते हैं विशेष परिस्थिति में। अद्य यवान्नम प्रासुकम भोक्षे न अन्यत, अथवा फिर ऐसा संकल्प भी ले सकते हैं कि आज मैं जवा, जवा कहते हैं बार्ले को, जानते हो जौ, जव, उसी का अन्न ग्रहण करूंगा बाकी कुछ नहीं लूंगा, ये नियम भी ले सकते हैं। अथवा अद्य मंडकान भोक्षे, आज मंडकान का मतलब होता है मंडक, मांड, मांड का भोजन ग्रहण करूंगा। मांड क्या होता है, चावल का मांड तो होता ही है, पर मंडकान बहुवचन दिए, ओदनम वा गृहीष्यामि, ओदन का अर्थ होता है भात, भात ग्रहण करूंगा। फिर शाकान्नम इदम मिलिष्यति तदा भोक्ष्य न अन्यत, आज ऐसा शाकान्न मिलेगा, मैंने शाकान्न का अर्थ होता है पत्ते वाली सब्जी अगर आज ऐसा मिलेगी तदा भोक्ष्य, तभी भोजन करूंगा, न अन्यत, और किसी अन्न और किसी चीज का भोजन, मतलब शाक और अन्न इन दो का ही मैं भोजन करूंगा, दाल अथवा और दूसरी सब्जियां हैं वो नहीं लूंगा। मतलब कहने का तात्पर्य है, जैसे कई स्थानों पर पत्ते वाली सब्जियों का निषेध करते हैं, साधु लोग ग्रहण नहीं करते, कई बार श्रावक लोग भी मना करते हैं कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है शास्त्रों में, उसका उसको अभक्ष्य की श्रेणी में नहीं रखा। वर्षा स्वदलितम चान्नम पत्र शाकम विवर्जित, चौमासे में उसका निषेध किया, बरसात के दिनों में पत्ते वाली सब्जियों का निषेध किया, क्योंकि उसमें नाना प्रकार के त्रस जीव जंतु आश्रय लेकर के बरसात गिरती है तब रहने लगते हैं। बाकी तो क्या है कि जीव जंतु तो हर जगह रहते हैं, शोधन करके तो सब्जियां बनानी पड़ती, उतना तो आरंभ गृहस्थ के जीवन में होता ही है। तो जब शाक और अन्न मिलेगा तभी मैं भोजन ग्रहण करूंगा, और कोई भोजन नहीं लूंगा, दूध वगैरह कुछ भी नहीं लूंगा, ऐसा भी नियम ले सकते हैं। फिर चणक, वल्ल, मुद्ग, माश, मसूरी का आदि नहीं अन्नानी भक्ष्यामी इति नान्यत, अथवा ये भी नियम ले सकते हैं कि चणक, सिर्फ चने का आहार ग्रहण करूंगा, अथवा वल्ल, वल्ल वाल किसको बोलते हैं, कठोर तो आता ही है, वो बरबट्टी के जो दाने रहते हैं वही ना, चौड़ा के बड़े वाले सफेद सफेद रहते हैं, हाँ ठीक है, बस बस बस, आप लोग कितने उत्कंठित हो गए आहार की चर्चा आई तो, है ना, बहुत सही बात। फिर वल्ल, फिर मुद्ग, मुद्ग का अर्थ मूंग होता है, मग, और माश का अर्थ उड़द होता है, माश षटकोण का श है, माश उड़द, फिर मसूरिका, मसूरिका को मसूर की दाल बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, मसूर बोलते हैं, मसूरी या मसूर, मसूर, और आदि शब्द से फिर और दूसरे प्रकार की और भी चीजें हो सकती है, राजमा वगैरह, ऐसे अन्न अगर मिलेंगे तभी भोजन करूंगा, ये भी नियम ले सकते हैं। यदैवम आद्यवग्रहम तत्सर्वम वृत्ति परिसंख्यानमिति, और जो इस प्रकार के और जितने भी संकल्प है साधुओं के मन में वो सब वृत्ति परिसंख्यान तप होते हैं। तथा और भी कहते हैं, पत्तस दायगस्य अवग्गहो बहुविहो ससत्तीये इच्छेवमादि विधिना ना दवावुत्ति परिसंख्या, पात्र का नियम ले सकते हैं, पड़गान करते समय वो कितने बर्तन लेकर के खड़े हुए हैं, माने कितने कलश है उनके हाथों में, कितने पात्र पकड़ करके खड़े हुए, अथवा वो दायगस, दायगस माने दातार कितने हैं, अगर सम संख्या में है विषम संख्या में, ऐसा कोई भी नियम ले सकते हैं कि सम संख्या में अगर होंगे तो वहां पर हम आहार लेंगे, विषम में होंगे तो वहां लेंगे, एक दिन में एक, ऐसा नहीं कि सम होंगे और विषम होंगे वहां लेंगे, ऐसा नहीं, सम होंगे अथवा विषम होंगे, और चौके के अंदर का भी नियम ले सकते हैं, जैसे पांच से लिया आहार अब छठे से नहीं ले रहे, अब कैसे लें, नियम उनका विषम संख्या का है, और छठे से ले तो फिर एक सातवा और लाओ कहीं से विषम संख्या को करने के लिए, अब उसको क्या मालूम कि कैसे करना उनको, तो ऐसे नियम हो सकते हैं। बहुविहो सत्य, अपनी शक्ति के प्रमाण साधु बहुत प्रकार के ऐसे अवग्रह ले सकते हैं। अब इन्हीं वृत्ति परिसंख्यान तप का जो सबसे उत्कृष्ट रूप है उसको वीरचर्या नाम दिया गया है, वीरचर्या, ये वीरचर्या का हम लोगों के लिए निषेध है, बाकी ये वृत्ति परिसंख्यान तप हम कर सकते हैं, लेकिन वीरचर्या का हमारे लिए निषेध आता है, आर्यिका के लिए भी निषेध आता है। वीरचर्या किसको कहते हैं, ऐसे संकल्प लेना जिनकी प्राप्ति लगभग असंभव है, जैसे आज मैं आहारचर्या के लिए निकलूंगा तो रास्ते में सांप मिलेगा तो जो भी आगे उसके सांप मिलने के बाद जो भी पड़गान करने वाला मिलेगा वहां मैं आहार ले लूंगा, सांप दिखने पर ही आहार लूंगा, ऐसा संकल्प ले ले, अब श्रावक को पता चले तो फिर तो व्यवस्था हो जाए, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन वो उनके मन का संकल्प है, ये वीरचर्या हो गई। अथवा वीरचर्या शांति सागर आचार्य महाराज ने कटनी में की थी कि बैल के सींग के ऊपर अगर गुड़ लगा होगा वो दिखे मुझे तो फिर आहार लूंगा, तो 7 दिन बाद वहाँ पर ठेला आया था गुड़ का, तो एक बैल ने वहाँ पर वैसे, और उसी समय महाराज जी निकले वहाँ से मंदिर जी से, तब उनका आहार हो पाया था 7 दिन बाद सलाल में। कौन से महाराज जी? हाँ खैर, कितने दिन में मिला था उनको? ऐसा कठिन नियम था, ठीक है, इसको वीरचर्या कहते हैं कठिन नियम को। ऐसे कई प्रकार के नियम हो सकते हैं कठिन नियम, जैसे राम ने मुनि अवस्था में ये नियम लिया था कि वन में अगर कोई दातार मुझे आहार दान दे तो आहार ग्रहण करूंगा। तो फिर उनको वैसा योग बन गया था उनका आहार का। तो ये सब वृत्ति परिसंख्यान तप होते हैं। अतः रस परित्यागम तपो विधानम आहार। अब रस परित्याग नाम का जो तप है उसको बतलाते हैं। संसार दुख तट्ठो विषम विषयम विचिंत माणो जो नीरस भोज्यम भुंजई रस चाओ तस्स सुविसद्धो। रस त्याग, निर्मल रस त्याग नाम का तप उन मुनि का होता है जो संसार के दुखों से भयभीत है और विष के समान विषयों का चिंतन करते हैं और नीरस आहार ग्रहण करते हैं, उनका रस परित्याग नाम का तप। अब रस कौन से हैं देखिए। तस्य भिक्षो रस त्याग स्वशरीर इंद्रिय रागादि वृद्धि कर दुग्ध दधि घृत गुड़ तैलादि रसानाम त्याग। इन रसों का त्याग, रस परित्याग, रस परित्याग है। स्वाभिलषित, अपने अभिलषित यानी इष्ट, स्निग्ध मधुर अम्ल कटुकादि रस परिहारो वा रस त्याग, यानी अपनी जो पसंद की चीज है उसका त्याग कर दो तो भी रस परित्याग तप हो गया। अथवा इन ऊपर गिनाए गए रसों में से किसी का त्याग करो तो भी रस परित्याग। घृतादि रसानां क्रमेण युगपत वा, क्रम से इनका त्याग करो तो भी रस परित्याग है। युगपत एक साथ करो तो भी। चतुर्थम रस परित्याग आख्यम तपो भवेत। कथम भूतो रस त्याग, कैसा है वो रस त्याग? सुविशुद्ध मिश्रादि दोष रहित, मिश्रादिक दोषों से रहित होना चाहिए। तस्य कस्य, कौन से साधु हैं? तो यह भिक्षु भिंगते अति अश्नाति जेमति। देखो जेमति ये भी शब्द दिया है संस्कृत में, जीमना बोलते हैं ना भोजन, जमी ले दू तो वो ये जमी ले दू, ठीक बोला हमने ये शब्द, तो ये इसी से बना। देखो संस्कृत से ही सब शब्द बने इधर उधर बदल बदल करके। जेमति किंतत नीरसम भोज्यम रस रहितम भोजनम आहारम दुग्ध दधि घृत तैल इक्षुरस लवण रहितम भोज्यम घृतपूर लड्डुक खाद्यादि रहितम, घी से भरे हुए लड्डू आदि जो मिठाइयाँ हैं उनसे रहित। फिर रस संसृष्ट सुपापू शाक पाक पकवान वट मंडकादि रहितम। फिर रसों से संसृष्ट बनाए गए सूपा और पूप, ये सब अलग अलग प्रकार के पकवानों के नाम हैं। पंडित जी ने अनुवाद किया कि नहीं उसका? अलग अलग प्रकार के पकवान होते हैं ये। अब ये संभवतः गुजरात से संबंधित रहे होंगे ये पकवान, क्योंकि ये जो टीकाकार हैं ये यहीं ईडर से संबंध रखने वाले, वहाँ के ग्रंथालय से संबंध रखने वाले शुभचंद्र आचार्य हैं। या हो सकता है क्या कि ज्ञान तो बहुत विस्तृत होता है साधु का, स्थान भले निश्चित हो लेकिन ज्ञान बड़ा विस्तृत होता है, तो सब जानकारी रहती हो। फिर वटक, वटक किसको बोलते हैं? मंडक आदि रहित, इन सब पकवानों से रहित भोजन लेंगे। तिक्त कटुक कषायाम्ल मधुर रस रहितम च भोजनम भुंगते उक्तं च मूलाचार्य। मूलाचार्य में और इसका वो दे दिया है बात वही है, खीर दधि सप्य तेलम गुड़ लवणानम चम परिचयनम, तित्त कड़ुक साय अम्बिल मधुर रसाणम चम क्षयनम इति। फिर एक गाथा दी आगे, अरसंच अन्न वेला कदंच शुद्धोदणंच लुक्खंच आयंबिल माया मो दणंच विगडोदणंचेव। अरसम स्वाद रहितम, फिर अन्य वेला कृतम वेलांतर कृतम किसी दूसरी बेला में बनाया हुआ भोजन, फिर शीतलानम ठंडा भोजन, शुद्धोदनम कोरा भात, फिर केनचित अमिश्रम किसी से मिला हुआ न हो, नमक भी न हो घी भी न हो कुछ न हो, रूक्ष्म स्निग्धता रहितम रूखा मतलब जिसमें चिकनाई बिल्कुल नहीं है, आचाम्ल असंस्कृत सौवीर मिश्रम, आचाम्ल का अर्थ होता है कि बिना संस्कारित किए गए यानी बिना छोंक वगैरह डाले गए सौवीर मिश्रम, जिसे अलग अलग नाम है भोजनों के, आचामलोदनम अप्रचुर जलम सिक्ता सिक्ताड्यम केचित वदंती, बोले कि जिसमें थोड़ा पानी है ऐसा भात से बना हुआ भोजन होता है उसको आचामलोदन बोलते हैं, इमली का पानी और भात, साउथ में चलता है ये। अवसावण सहितम इत्यन्य, असाव अवसावण सहितम, ओसावण बोलते हैं ये, देखो संस्कृत से ही बना है ये शब्द, ओसावण का मतलब बस, हाँ ये भी बोलते हैं इसको, ये आचाम्ल का अर्थ ये हो गया, या तो अवसावण सहितम अथवा इमली का पानी के साथ भात, ऐसा भोजन भी है। विघटोदनम अतीव तीव्र पक्वम उष्णोदक सन्मिश्रान्नम इत्यपरे, अथवा जो खूब तेज पकाया गया है और गर्म पानी से मिलाया गया है ऐसा कोई अन्न वो भी कहते हैं। तत्किमर्थम रस त्याग, रसों का त्याग क्यों करते हैं, तो दांतेन्द्रियत्वम तेजो हानि संयम अतिचारादि दोष निवृत्ति रित्येवमाद्यर्थम, बोले कि इंद्रियां वश में हो और शरीर ज्यादा तेजो हानि का मतलब बहुत जो तेज रहता है ना उसमें कुछ कमी आए हैं इसलिए वो ये रसों का त्याग कर देते हैं। संयम है, संयम के लिए भी करते हैं, अतिचार आदि दोषों से छूटने के लिए भी करते हैं। फिर विविक्त शय्यासन नाम का तप है, जो राय दोष हेदु आसन सिज्जादियम परिचय अपाणि विषय सया तस्य तवो पंचमो परमो। जो राग द्वेष में हेतुभूत आसन और शय्या आदि का परित्याग कर देते हैं और अपने आत्मा को निर्विषय रखते हैं सदा, उनका वो पंचम परम तप विविक्त शय्यासन होता है। पूयादिसु निर्वेखो संसार शरीर भोग निविन्नो अभ्यंतर तव कुशलो उपशमशीलो महासंतो, जो निवसेदि मसाणे वणगहणे निज्जणे महाभीमे अन्नत्थवि एयन्ते तस्वीदं तवं होदी। जो लोक प्रतिष्ठा आदि से निरपेक्ष होकर संसार शरीर और भोगों के प्रति निर्विण्ण रहते हुए विरक्त होते हुए अभ्यंतर तप कुशल अंतरंग तपश्चरण में भी कुशलता धारण करते हुए उपशमशीलो शांत रहना जिनका स्वभाव है, अथवा महासंतो अत्यंत शांत प्रकृति वाले साधु, जो मसाणे निवसेदी स्मशान में निवास करते हैं। हमारे गुरु महाराज ने दीक्षा के बाद आचार्य ज्ञान सागर जी के संलेखना मरण के पश्चात 22-22 घंटे तक श्मशान में निवास किया है। 2 घंटे के लिए शहर में आते थे, प्रवचन करते थे, आहार लेते थे, फिर वापस श्मशान चले जाते थे। ऐसा उनका क्रम बहुत समय तक चला है। हमने एक बार पहले बताया था कि 8 वर्ष तक उन्होंने बिल्कुल तीर्थंकर की चर्या का पालन किया है, लगभग वैसी कठिन उन्होंने तब साधनाएं की है, गुफाओं में ध्यान लगाया और सारी चीज़ें हैं। अभी तो आजकल वो सब चर्चाएं दिखाई नहीं देती, मतलब किसी के मुख से सुनाई भी नहीं देती। वो आचार्य श्री की स्मृति में है, वो अपने मुँह से अपनी बड़ाई कैसे करें। तो ये सारी घटनाएँ हैं उनके जीवन की, शुरू के वर्षों में उन्होंने ये सब काम किए, अभी भी करते रहते हैं तपस्या। क्या है कि नैनागिर में जब आए थे शुरू में, 3 चातुर्मास किए उन्होंने नैनागिर में, तब वहाँ ऊपर चले गए क्षेत्र में रुकने के लिए, नीचे धर्मशाला में नहीं रुके। तो फिर पहली बार वहाँ के सब लोगों ने बोला कि अरे महाराज वहाँ कहाँ जा रहे, वहाँ तो कोई नहीं जाते। तो भी महाराज माने नहीं, वहीं चले गए। और वहाँ जा कर के वो जो मंदिर थे ऊपर क्षेत्र में, उनकी खिड़कियों में वो जो रॉड लगे हुए हैं, खिड़कियाँ भी बंद करने लायक थी नहीं, तो वहीं बैठे रहे वो, और वहीं बैठे बैठे रात व्यतीत कर देते थे। और फिर बाद में फिर धीरे धीरे जैसे प्रभाव हुआ उनका, प्रवचन सुनकर के लोग बहुत आकर्षित हुए बुंदेलखंड में, तो प्रभाव जैसे जैसे फैला तो फिर लोगों को लगा कि महाराज को ठंड लगती होगी रात में, अपन तो रात में चद्दर ओढ़ के रजाई ओढ़ करके भी ठिठुरते रहते हैं, अब वो वहाँ खिड़की में कैसे करते होंगे। तब फिर लोगों ने वहाँ पर खिड़कियाँ लगाई और सब क्षेत्र की व्यवस्था एकदम अलग हो गई वहाँ पर, अब जम गई। तो उस समय उन्होंने खड़े रह करके वो 24 नमोकार मंत्र की माला फेरते थे। एक बार खड़े हो गए तो जब तक 24 नमोकार मंत्र की माला पूर्ण न हो जाए तब तक के वहाँ से हिलते नहीं थे। शाम को खड़े हो गए 5:45 बजे या 5:30 बजे, और रात को 10-10:30 बजे तक के वो मालाएँ पूर्ण होती थी। और उसमें भी आचार्य श्री का पर्टिकुलर ये नियम था कि वो मालाएं ऐसे हाथ ऐसे रखेंगे, लेकिन वो अंगूठे से गिनेंगे भी नहीं, सिर्फ मन में वो माला चलती रहेगी। और मन में आचार्य श्री की विधि ऐसी है, वो घड़ी के कांटों को लेकर के चलते हैं कि घड़ी के कांटों में जैसे ये 12 नंबर्स डले हैं, तो सेकंड का कांटा, मिनट्स का कांटा और घंटों का कांटा, इस प्रकार से वो चलाते हैं। तो ऐसे घुमाते 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 जब वो पूरी एक माला हो जाए फिर आदिनाथ भगवान को नमस्कार, दूसरी माला हो जाए अजितनाथ भगवान। ये तो हम अपने कल्पना से बता रहे हैं, आदिनाथ अगर हम करें तो फिर ऐसे तीर्थंकरों का स्मरण करके कर ले, लेकिन महाराज जी पता नहीं कैसे करते थे, वो पूरी 24 माला करके उठते थे। और फिर उस समय के जो साधु थे संघ में उनके द्वारा दीक्षित, उनको भी आचार्य श्री ने ये साधना कराई है, क्षमा सागर महाराज जी, गुप्ती सागर महाराज जी, योग सागर जी, समय सागर जी, उस समय के जो साधु थे। फिर बाद में सुधा सागर महाराज जी वगैरह की दीक्षा तो बाद में हुई है इधर ईसरी वगैरह में, 83 में ये सब साधनाएं पहले हो चुकी थी। तो वो सब अलग अलग जो बैच बने हैं, तो पुराने बैच जो हैं वो कुछ अलग हैं, और फिर बाद वाले बैच हैं उनमें कुछ अंतर है, और अभी बाद के जो बैच हैं उनमें भी अंतर है। अब क्वालिफिकेशंस में अंतर है ये तो आपकी दृष्टि होगी, लेकिन यहाँ के जो अंदर वाले क्वालिफिकेशंस है जो तप वाले उनमें भी अंतर है ऐसा। फिर भी अभी नए साधु भी जो हैं, खैर चर्या तो वही है, ग्रंथ भी वही है। तो अभी भी चंद्रप्रभ सागर महाराज जी हैं अपने संघ के, वो बहुत बड़े उपवासी साधु हैं। उन्होंने अभी तक दीक्षा के बाद, दीक्षा के जितने दिन हुए जितने वर्ष हुए उसमें से आधे वर्ष तो उनके उपवास में ही गए हैं, इतने उपवास किए हुए हैं उन्होंने। अभी जलगांव में शायद था कार्यक्रम, तब वो थे महाराज जी विनीत सागर जी के साथ, बहुत उपवास करते हैं। अभी तो उन्होंने 5 उपवास 1 आहार 5 उपवास 1 आहार ऐसा भी क्रम रखा था, और सिंह निष्क्रीडित का उन्होंने अभी अनुष्ठान किया था इस चौमासे में, औरंगाबाद में चौमासा हुआ था उनका सिडको में, तो सिंह निष्क्रीडित तप उन्होंने अभी संपन्न किया, ऐसी खबर सुनने में आई है। तो जो श्मशान में निवास करते हैं, वन गहन में, गहन वन में निवास करते हैं, या फिर निर्जन स्थान में जो बहुत भयंकर स्थान है जहाँ कोई आता जाता नहीं, रेगिस्तान में कहीं चले जाए वहाँ पर रात को खतरनाक जानवर आते हों, ऐसे स्थानों पर निवास करते हैं। अन्यथ भी यही थे, अन्य भी एकांत स्थानों में गुफा आदि में जो निवास करते हैं उनका यह वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप होता है। वृत्ति परिसंख्यान विविक्त शय्यासन नाम बदल गया, ये भी एक लक्षण है। क्या होता है कि जब अपन कुछ शब्द बोलना चाहते हैं और फिर कोई और शब्द निकल रहे हैं, तो इसके बारे में शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में आचार्य उग्रादित्य स्वामी ने लिखा है कि उस समय आपके शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, जिस समय आप बोलना कुछ चाह रहे हैं और फिर निकल कुछ और रहा है, इसका मतलब ये है कि शरीर को भोजन की आवश्यकता है। तो इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें भूख लग रही है। अब इन गाथाओं की टीका में 46 दोष दिए हैं। साधु कैसे स्थान पर ठहर सकते हैं और उस स्थान पर 46 प्रकार के दोष नहीं लगने चाहिए, उसी स्थान पर साधु रह सकते हैं। जैसे भोजन होता है ना साधु का, उसमें 46 दोष नहीं होते। शुरू में आज अपन ने प्रकरण पढ़ा था, 46 उद्गम, 16 उद्गम दोष, 16 उत्पादन दोष, 10 प्रकार के ऐषणा दोष, आहार जल शुद्धि जिसको बोलते हैं ना आप, फिर अंगार, धूम, संयोजना और अप्रमाण, ऐसे ये 4 दोष। तो 42 और 4 46 दोष होते हैं। वैसे ही 46 दोष साधु के निवास स्थान से संबंधित होते हैं, उसका स्वाध्याय अपन फिर देखेंगे। विविक्त शैया से साधु कैसे स्थान पर ठहर कर शयन करे, आसन लगाकर तपस्या करे। 448 और 449 ये दो गाथाएं हैं, इनकी व्याख्या देखें। तस्यान गारिण इदम विविक्त शय्यासनाख्यम तपो भवति। उस अनगारी अर्थात साधु के विविक्त शय्यासन नाम का तप होता है। तस्य कस्य, वो कौन से साधु है? यह भिक्षु, जो भिक्षु पूजादिषु निरपेक्ष है, पूजा मान प्रतिष्ठा आदि के प्रति निरपेक्ष अपेक्षा रहित है, पूजा ख्याति यशो महिमा लाभादिषु निष्प्रिय है। पूजा है, ख्याति है, यश है और महिमा और लाभादिक के प्रति, इनके लाभ के प्रति निष्प्रिय है, स्प्रिया यानी इच्छा नहीं है। दृष्टश्रुतानुभूत भोगाकांक्षा रूप निदान रहित, देखे गए, सुने गए, भोगे गए जो भोग है उनके आकांक्षा रूप निदान से रहित है। पुनः कथम भूत, और कैसे हैं? संसार शरीर भोग निर्विण्ण, संसार नर नारक आदि चतुर्गति लक्षण, संसार यानी नर नारक आदि 4 गति, शरीरम देह है, शरीर यानी देह, भोग, भोग क्या है? युवत्यादि समुद्भूत भव, स्त्री आदि से उत्पन्न होने वाला सुख, फिर इंद्रिय विषयोद्भव, इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न होने वाला द्वंद्व, तेभ्य निर्विण्ण, ये तीनों का द्वंद्व समास कर दिया तो इन तीनों से निर्विण्ण यानी विरक्त, वैराग्यम प्राप्त, वैराग्य को प्राप्त, संसार से भी वैराग्य, शरीर से भी वैराग्य और भोगों से भी वैराग्य को प्राप्त। नरकादि गतिषु, नरक आदि गतियों में दुख छेदन शूलारोपण कुंभिपाक पचन क्षुधा तृषा वेदनोद्भव इष्टानिष्ट वियोग संयोग मानसिक आदि जन दुखम वर्तते। नरक आदि गतियों में ये अलग अलग प्रकार के दुख वर्तते हैं, पाए जाते हैं। कौन से दुख हैं? तो एक तो सामान्य दुख, फिर छेदन यानि काटना, शूलारोपण यानि सूली पर चढ़ाना, और कुंभिपाक पचन यानि, कुंभिपाक कहते हैं एक बर्तन के ऊपर दूसरा बर्तन रख करके फिर अंदर काढ़ा बनाया जाता है, आयुर्वेद की पद्धति है वो, तो उसको चारों तरफ से सील कर देते हैं और अंदर से फिर नीचे अग्नि जला करके काढ़ा बनाते हैं। नरकों में इसी प्रकार से उन नारक जीवों को वो दूसरे नारक उसमें डाल करके पकाते हैं। फिर क्षुधा, भूख, तृषा, प्यास, इनकी वेदना से उत्पन्न होने वाला दुख, फिर इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग से होने वाला दुख, और मानसिक आदि जन, और मानसिक आदि जनित जो दुख होते हैं वे सब वर्तते, 4 गतियों में पाए जाते हैं। मानसिक दुख देवों में होता है, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग मनुष्यों में होता है, और भूख प्यास की वेदना से उत्पन्न होने वाले दुख तिरियंचों में होते हैं, और फिर नरकों में सूली पर चढ़ाना, कुंभिपाक में पकाना आदि वहाँ नरक गति संबंधी दुख होते हैं। शरीरम विनाश सप्त धातु मयमिति, शरीर नश्वर है, 7 धातु से रचा हुआ है। भोग रोग ग्रहम, भोग कैसा है? रोगों का स्थान है, घर है। ज़्यादा शक्कर खाओ डायबिटीज़ हो जाती है, ज़्यादा घी तेल खाओ तो एथीरोस्लेरोसिस, आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाती, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, सब ये जितने भी भोग हैं, खाने पीने के तो छोड़ो, और बाकी भी इंद्रियों के जो विषय हैं, अमेरिका में अभी सर्वे हुआ तो फिर पता चला कि कलर्ड टेलीविजन देखने वाले बच्चों में 95% जो आँखों के कैंसर के केसेस होते हैं वो सारे कलर्ड टेलीविजन देखने वाले लोग रहते हैं, पास से बैठ करके देखते हैं। टेलीविजन का जो स्क्रीन है उससे चौगुनी दूरी से कम बैठ करके उसको देखने का बताते हैं वैज्ञानिक। मतलब ये सारे भोग जो हैं रोग ग्रह, रोगों के घर हैं। विनाशकारी इति, नश्वर है, विनाशकारी है। इति चिंतन वैराग्यवान, ऐसा चिंतन करने वाले वैराग्यवान वो साधु पुनः कथम भूत, और किस प्रकार के हैं। अभ्यंतर तपः कुशल, अंतरंग तप करने में कुशल है। अभ्यंतरेषु तपस्सु तपश्चरणेषु प्रायश्चित्तादिषु कुशल, अंतरंग तप जो है प्रायश्चित आदि उसमें कुशल है, निपुण है, निष्णात है, दक्ष है, चतुर है, विवेकी। कितने सारे पर्यायवाची शब्द दे दिए, अच्छी डिक्शनरी बन सकती है। कुशल, निपुण, निष्णात, दक्ष, चतुर, विवेकी। पुनः कीदृक्ष, और कैसे हैं। उपशमशील है, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग द्वेषादि नाम उपशम स्वभाव, इन सबको शांत रखना जिनका स्वभाव, अनुदय स्वरूप है, इनको प्रकट नहीं होने देते, शांत रखते हैं। पुनः कीदृक्, और कैसे हैं। महाशांत है, अत्यंत शांत है। महान पूज्य सचासव शांत है, महान का अर्थ पूज्य ले लिया, और सचासव शांत है, इतने शांत है कि वो पूज्य है। क्षमादि परिणत, क्षमादि रूप परिणत रहने वाले। यह एवं भूत क्षपक, जो इस प्रकार के क्षपक यानी साधु हैं। यहाँ क्षपक शब्द का अर्थ संलेखना रत नहीं लेना, क्षपक यानी साधु। स श्मशाने निवसति, वो श्मशान में निवास करते हैं। श्मशान का पर्यायवाची शब्द पितृवने तिष्ठति, पितृवन पिताओं का जंगल, श्मशान इसका पर्यायवाची शब्द संस्कृत में। क्व वसति संतिष्ठति, कहाँ कहाँ ठहरते हैं, तो उत्तर वन गहने, महावने, वन गहन का अर्थ बड़ा वन, गहनारण्य, गहन अरण्य में, अन्यत्रापि और भी दूसरे स्थानों पर। उद्वस गृह, खाली घर पे, गिरी खाली गुफा में, गिरी गुफा माने पहाड़ की गुफा में। कंदर कोटर आदि के, कंदराएं होती है, मतलब जब चट्टानों में दरारें पड़ जाती और बीच में जगह हो जाती बड़ी, और कोटर का मतलब पेड़ों के अंदर जो खोल बन जाती है, आदि स्थानों पर निवास करते। कथम भूते, कैसे हैं वे स्थान। विविक्ते शून्य है, ध्यानाध्ययन विघ्न कर स्त्री पशु पांडक आदि वर्जिते, ध्यान और अध्ययन में विघ्न डालने वाले जो स्त्रियां पशु यानी जानवर, पांडक यानी नपुंसक आदि से वर्जित यानी रहित हैं, ऐसे स्थानों पर वो साधु निवास करते। पुनः कथम भूते स्थान है, और कैसे होते हैं स्थान। महाभीमे अत्यंत भयंकर, महारौद्र अति भयानक, एवं भूते वासे वसति, ऐसे निवास पर वो वसति यानी निवास करते हैं। यह तस्य विविक्त शय्यासन तपो विधानम स्यात्, उन मुनि के पास ये वाला तप होता है। तथा श्री भगवती आराधनायाम विविक्त शय्यासन निरूपणा कथ्यते, उसी प्रकार भगवती आराधना ग्रंथ में विविक्त शय्यासन तप की निरूपणा कही जाती है। यस्याम वसतो, जिस निवास पर न विद्यते अशुभ परिणाम, अशुभ परिणाम नहीं विद्यमान होते। कई कृत्वा किन के माध्यम से, तो बोले शब्द रस रूप गंध स्पर्शे ही, तो पांच इंद्रियों के विषय संबंधी अशुभ परिणाम जहाँ उत्पन्न नहीं होते। कर्णभूते मनोज्ञी अमनोज्ञीर्वा, सुंदर अस्वा असुंदर दोनों प्रकार के विषय हो सकते हैं, तो इनसे बाधा जहाँ ना आती हो, सा विविकता वसती, उस वसतिका को विविक्त वसती कहते हैं। स्वाध्याय ध्यान योर व्याघातो वा नास्ति सा विविकता होती, अथवा जिस स्थान पर स्वाध्याय और ध्यान इन दो का व्याघात न होता है वो विविक्त वसती। वियडाए अवियडाए सम विषमाय बहिंच अंतो वा इथिणंसय पशुवज्जिदाय सीदाय उसिनाय। विघटायाम उद्विघटायाम उद्घाटित द्वारायाम, विघटायाम का मतलब होता कि खुले द्वार वाला स्थान हो, अव्यडाय बंद द्वार वाला अनुद्घाटित द्वार आए, वाह। फिर समभूमि समन्वितायम वाह, समभूमि में समन्वित माने एकदम समतल भूमि हो, बहिर्भाग या अभ्यंतर वाह, उसके बाहरे वाले भाग में या अंतरंग वाले भाग में, दहलान में या अंदर। फिर विषम आए, विषम भूमि भी हो सकती है, उबड़ खाबड़,